हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 86। अंबिका ने गुस्से से तमतमाते हुए कहा, भलाई शब्द भी तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा है, सुनने में इसलिए अच्छे बनने का दिखावा मत करो। कौन सा कोई एहसान किया है तुमने मुझ पर? इतने दिनों से मैं यहाँ पर हूँ, मुझे तो याद भी नहीं कितना समय हो गया, और इतने दिनों में आज पहली बार ही मैंने अपने घर पर बात की थी, वो भी तुमने ठीक से नहीं करने दी। वेदांश ने बिना उसकी बातों की परवाह किए अपना फ़ोन वापस लेते हुए कहा, जो मुझे सही लगता है मैं वही कर रहा हूँ, और हाँ, भलाई या बुराई, मेरी जो अभी मर्जी में आएगा मैं वो करूँगा। तुम्हारी नज़र में तो मैं वैसे भी बुरा हूँ और कभी अच्छा नहीं बन सकता, तो फिर इतनी अच्छाई बहुत है आज एक दिन के लिए। अंबिका चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने पापा की आवाज़ सुनी थी और अपने भाई बहनों से भी बात की थी। वो उनके पास जाना चाहती थी लेकिन जा नहीं पाई, और अब वो फिर से इस कैद में फंसी महसूस कर रही थी। उसने गहरी सांस लेकर वेदांश से दूर हट गई और सोचने लगी कि क्या कभी उसे अपनी आज़ादी वापस मिलेगी, क्या वो कभी अपने घर परिवार के पास वापस जा पाएगी। ये सवाल मन में आते ही अंबिका अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई, थोड़ा आगे गई और वो बालकनी की तरफ जाने लगी, लेकिन उसकी आंखों के सामने अपने घर वालों के चेहरे घूम रहे थे। उनके साथ बिताए हुए वे खुशहाल पल उसकी आंखों में तैरने लगे। वेदांश की नज़रें अभी भी उस पर थीं, लेकिन वो जानता था कि अंबिका इस वक्त अंदर से कितनी टूट चुकी थी। अंबिका ने अपने आंसू पोंछते हुए सोचा, वो सब मेरे बिना परेशान हैं और मुझे याद कर रहे हैं, लेकिन कम से कम सेफ तो हूँ मैं यहाँ पर रहने की वजह से। अगर उन पर कोई आँच नहीं आती है तो मैं ज़िंदगी भर ये कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। वेदांश का मोबाइल फ़ोन रिंग हुआ और कॉल पर बात करते हुए वो वहाँ पर साइड में चला गया। अंबिका ने उसकी तरफ इतना ध्यान भी नहीं दिया कि वो किससे और क्या बात कर रहा था। वो अपने में ही परेशान थी, वहाँ बालकनी के पास ही खड़ी हुई थी। कॉल पर बात करते हुए भी वेदांश की नज़रें अंबिका पर ही जमी हुई थीं। उसे लगा था कि अंबिका खुश हो जाएगी और अपने घर वालों से बात करके थोड़ा अच्छा महसूस करेगी, लेकिन अभी तो उसका उल्टा ही हो गया। वो अब और भी ज़्यादा उदास, मायूस लगने लगी थी, और उसे ऐसे देखकर वेदांश को तकलीफ़ हो रही थी। 80। वेदांश ने अंबिका से कुछ भी नहीं कहा। कुछ देर के बाद बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अंबिका ने उस तरफ मुड़कर देखा भी नहीं। वेदांश को अपने बर्ताव के लिए थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और मेड अंदर आ गई जो उन दोनों के लिए खाना लेकर आई थी। मेड खाना रखकर वहाँ से चली गई, लेकिन उन दोनों में से किसी ने भी खाना नहीं खाया। अंबिका ने तो खाने की तरफ देखा तक नहीं, उसने सिर्फ एक नाराज़गी भरी नज़र से वेदांश की तरफ देखी और चुपचाप अपनी जगह पर लेट गई। वहीं दूसरी तरफ अचानक से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाने की वजह से अक्षय परेशान हो गया था। अंबिका किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई, ये सोचकर अब उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अंबिका से बात करने के बाद वो अकेले वहीं ड्राइंग रूम में बैठा दीवार को घोर रहा था, और उसकी आंखों में निराशा थी। उसके दोनों भाई बहन भी वहाँ पर आसपास थे। इतनी देर से वो दोनों भी अंबिका के बारे में सवाल कर रहे थे। देविका ने पूछा, अक्षय भैया, इस नंबर से फ़ोन आया था, वो अंबिका दीदी का नंबर तो नहीं था, लेकिन फिर भी आप नंबर सेव कर लेना, अगर हमें दोबारा बात करनी हो तो फिर हम इस नंबर पर कॉल बैक कर लेंगे, है ना? मानस ने भी नाराज़ होते हुए कहा, हाँ, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी थी कॉल डिस्कनेक्ट करने की, मेरी तो बात भी नहीं हो पाई दीदी से, आज कितने दिनों बाद मैंने उनकी आवाज़ सुनी थी और मुझे वो ठीक नहीं लग रही थी। अक्षय के पिता भी वहीं पर किनारे बैठे हुए थे, इसलिए अक्षय को लग रहा था कि कहीं उसके भाई बहन उसके पापा के सामने अंबिका के शहर में ही होने वाली बात ना बोल दे, इसलिए उसने बात काटते हुए कहा, उन्हें ज़रूरी काम होगा और वैसे भी उन्होंने इतना समय निकालकर हमें फ़ोन तो किया, कम से कम हम बार बार उन्हें परेशान नहीं करेंगे। तुम दोनों भी बड़े कब होगे, बच्चों की तरह बर्ताव करते हो। अक्षय ने उन दोनों को समझाते हुए कहा, तो उसके पापा ने कहा, बच्चे ही तो हैं वो दोनों और मुझे भी यही लग रहा है, इतनी भी क्या जल्दी थी, अंबिका थोड़ी देर और बात कर लेती तो दोबारा से फ़ोन लगा, हम फिर से अंबिका से बात कर लेंगे, अक्षय के पापा ने कहा, तो अक्षय थोड़ा सा झिझक गया, लेकिन फिर उसने कहा, नहीं बाबा, हम ऐसे बार बार फ़ोन कॉल करके दीदी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वैसे भी जब उन्हें समय मिलेगा तो वो फिर से कॉल कर लेंगी। अक्षय की इस बात पर वो सभी समझ गए और फिर किसी ने भी ज़िद नहीं की अंबिका से बात करने की। कुछ देर के बाद अक्षय वहाँ से उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया और फिर वहाँ लिविंग एरिया से सारे लोग इधर उधर हो गए। मिशिका भी वहाँ पर साइड में खड़ी थी, उसे भी अंबिका के फ़ोन कॉल के बारे में पता चल गया था। मिशिका काफ़ी हैरान थी और उसने अपने आप से कहा, अक्षय की बहन तो वहाँ पर है, वेदांश भैया के कब्जे में, अस्पताल से वापस उन्हें आपके साथ लेकर गए थे, तो फिर कैसे उन्होंने अंबिका दीदी को बात करने दिया घर वालों से? क्या सच में वो मेरे भाई थे या फिर कोई और? क्या किसी ने अंबिका दीदी की मदद की होगी? हाँ, हो सकता है माँ ने मदद की हो। मिशिका के मन में ये सारे सवाल चल रहे थे। फिर उसने इधर उधर देखा और चुपके से अक्षय के कमरे की तरफ आ गई। अक्षय भी इसी सोच में डूबा हुआ वहाँ पर बैठा था। तभी दरवाजा खुलने की आवाज हुई तो अक्षय का ध्यान दरवाजे की तरफ गया और उसने मिशिका को दरवाजे पर देखा तो तुरंत ही अपनी जगह से उठकर खड़ा होते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसी ने देख लिया तो? मिशिका ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं कोई भी नहीं है, देविका सब्जी लेने के लिए गई है, मानस कोचिंग गया है और तुम्हारे पापा अपने कमरे में दवा खाकर रेस्ट कर रहे हैं। किसी ने मुझे यहाँ आते नहीं देखा, लेकिन मुझे पता था तुम अकेले परेशान होकर बैठे हो, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। उसके बाद सुनकर अक्षय थोड़ा सा रिलैक्स हुआ और दोबारा वहाँ पर अपनी जगह पर ही बैठ गया। मिशिका ने अंदर आते ही अक्षय की चिंता को भांप लिया। क्या हुआ अक्षय, अब तुम इतने परेशान क्यों हो? आज तो तुम्हारी दीदी से बात भी हो गई, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, उसने अक्षय के पास आकर कहा। अक्षय ने सिर झुकाए हुए कहा, मिशिका, अंबिका दीदी ठीक नहीं है, वेदांश उसे हर तरह से कंट्रोल कर रहा है और वो उस जगह से बाहर नहीं निकल पा रही। मिशिका ने हमदर्दी जताते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, ये बहुत ही बुरी बात है, मेरे भाई ने तुम्हारी बहन को जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ है और उनसे जबरदस्ती शादी भी कर ली, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता रहता है। मिशिका ने थोड़ा परेशान होते हुए ये बात कही तो अक्षय ने उससे तुरंत ही पूछा, उसकी बहन होकर जब तुम्हें नहीं पता कि क्या चलता रहता है तुम्हारे उस पागल भाई के दिमाग में, तो हम उसे कैसे समझ पाएंगे? लेकिन मुझे कैसे भी करके अंबिका दीदी को वहाँ से बाहर निकालना है, मैं उन्हें हमेशा तो वहाँ पर नहीं रहने दे सकता, भले ही उसने दीदी से नाम की और दिखावे की शादी कर ली हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, अक्षय ने बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहा। तो मिशिका ने धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, मेरी वेदांश भैया से कोई इतनी खास बॉन्डिंग नहीं रही, उन्हें बस हमेशा दूसरों को कंट्रोल करना ही आता था और जो उनकी बात नहीं मानता था वो कभी भी उनका खास नहीं रहा और मैं भी उनमें से एक थी, मुझे हमेशा उनके खिलाफ जाना ही पसंद रहता था। अक्षय ने मजाक में कहा,
अच्छा तो इसीलिए तुमने मुझसे प्यार किया, तुम्हारे भाई ने पक्का तुम्हें मना किया होगा कि किसी भी गरीब मिडिल क्लास लड़के की तरफ देखना भी मत, और तुमने एग्जैक्टली वैसा ही लड़का चुन लिया अपने लिए। अक्षय का मूड थोड़ा सा बदल गया था, लेकिन मिशिका ने उसके हाथ पर मारते हुए कहा, चुप करो तुम, कुछ भी बोलते हो, ऐसा कुछ भी नहीं था, तुम्हें पता है हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल नेचुरल था, हम दोनों में से किसी ने भी ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था, और हमारी फर्स्ट मीटिंग के टाइम को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ऐसा कुछ हमारे बीच कभी हो सकता है, लेकिन आज देखो मेरी दुनिया बन चुके हो। इस बारे में बात करते हुए वो दोनों ही थोड़े इमोशनल हो चुके थे। तभी अक्षय ने बात बदलते हुए कहा, हाँ मुझे पता है सब कुछ, मैं बस मजाक कर रहा था थोड़ा मूड लाइट करने के लिए, लेकिन शायद अभी उससे ज्यादा जरूरी कुछ और है, तो मुझे ये बता सकती हो कि तुम्हारे भाई की क्या कमजोरी है और किस तरह हम वहाँ से अंबिका दीदी को वापस ला सकते हैं? टू बी कंटिन्यूड। कैसा लगा आज का एपिसोड? थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गया क्या? और इस फोन कॉल के बाद क्या अक्षय अंबिका से मिलने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी पूरी बात भी नहीं हो पाई अंबिका से? और क्या मिशिका और अक्षय मिलकर बना देंगे अंबिका को बचाने का कोई सॉलिड प्लान? और कौन कौन अक्षय मिशिका की स्टोरी देखने में भी इंटरेस्टेड है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।